बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ 15 मार्च 2019। ये असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। आज हम आपके लिए सिलसिला दौरे नबूवत के बच्चे जो अशफाक अहमद ख़ान ने लिखे हैं पेश करने जा रहे हैं। अगर आप हमसे मज़ीद किताबों के लिए राबता कायम करना चाहते हैं तो हमारे टेलीफ़ोन नंबर 0321-2138-2225 पर राबता करें, या फिर हमारी वेबसाइट www.alsafar.org, www.alsuffa.org के ज़रिए भी हमसे मुंसलिक हो सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं सिलसिले से बाग़ नबूवत का फूल पार्ट नंबर 1, जो 32 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पेशे लफ्ज़। इंसान को अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल इख्तियार होता है। उसे किस अंदाज़ में और किस तरह से गुजारना है, उसका फ़ैसला उसके अपने हाथों में होता है। आम तौर पर हमारी पूरी ज़िंदगी अपने हुकूक़ पाने की जद्दोजहद में गुजर जाती है। अपना हक़ पाने के लिए हम हर जतन करते हैं, लेकिन हुकूक़ की जंग लड़ते लड़ते हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। अपनी ज़ात से मुतालिक अफराद के फ़राइज़ अक्सर हमारी निगाहों से ओझल रहते हैं, लेकिन हमारी इस कहानी बाग़ नबूवत का फूल का किरदार बहुत अजीम और बहुत आली मर्तबा नौजवान है। उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत खूबरू, हसीन और पुरवक़ार शख्सियत का मालिक बनाया था। उन्होंने दूसरों की ज़ात के हवाले से हमेशा फ़राइज़ अदा करने को तरजीह दी। वो परहेजगारी और ज़हद व तक़वा की बेहतरीन मिसाल थे। फसाहत व बलागत की खूबी उनकी शख्सियत की पहचान थी। वो बहुत बर्दबार और नरम मिजाज थे। अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती को उन्होंने हमेशा तहम्मुल से बर्दाश्त किया। वो समझते थे कि जो लोग उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं उसका सबब उनकी जहालत है, इसीलिए वो उनसे दरगुजर फरमाते थे। उनके वालिद की वफ़ात के बाद लोगों ने उन्हें खिलाफत की जिम्मेदारी का अहल जाना, क्योंकि उनके नज़दीक वो बेहतरीन औसाफ़ और काबिल तारीफ़ अखलाक के मालिक थे। हमेशा हक़ पर साबित कदम रहते थे। सखावत और बहादुरी आपकी शान थी, बुर्दबारी और सब्र आपकी पहचान थी। लोगों ने आपकी बैत की और आप तकरीबन 7 माह खिलाफत के ओहदे पर फाइज रहे। फिर उस ओहदे पर तनाज़ा उठ खड़ा होने से उन्हें सख्त कोफ्त हुई। चुनाचा हकदार होने के बावजूद वो खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को आपस की खून रेजी से बचाया जाए। इस तरह उन्होंने अपने बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई दुरुस्त फरमा दी, जिसके अल्फाज कुछ यूं थे। अल्लाह ताला उनके साथ मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। रवादारी, बर्दाश्त और तहम्मुल का ये मुजाहरा उनकी अजमत की शानदही करता है। इसका सबब शायद यही था कि वो नबूवत के बाग में खिलने वाले खुशबूदार फूल थे। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की घुट्टी मिली थी। बाग़े नबूवत का फूल अपने अंदर हर पढ़ने वाले के लिए बहुत से असबाक लिए हुए है। पढ़िए और देखिए कि वो लोग क्या होते हैं जिन पर दुनिया फ़ख्र करती है। वस्सलाम, अब्दुल मालिक मुजाहिद। कुछ मंज़र दिलो निगाह में बस कर रह जाते हैं। उनमें इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत होती है कि वो अपने किरदारों का मुकम्मल तारुफ बन जाते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही मंज़र था। लोग इबादत में मसरूफ़ थे, हर किसी का अपना अपना अंदाज था। एक इंतहाई खूबसूरत और वजी नौजवान बहुत खामोशी के साथ अपने रब के हुजूर सर झुकाए इबादत में मसरूफ़ था। अचानक उस खूबसूरत नौजवान का इन्हमाक टूट गया। उसने चौंक कर देखा तो अपने पहलू में एक आदमी को गिरिया करते हुए पाया। पहले तो उसे इस बात की समझ में ही ना आई कि उसकी आहजारी का सबब क्या है। वैसे भी रोते हुए आदमी की बात कम ही समझ में आती है। चंद लम्हे गौर के बाद बात समझ में आ गई। वो भी अपने अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद कर रहा था, गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था, मेरे अल्लाह मुझे 10,000 दरहम का मालिक बना दे। वो खूबसूरत नौजवान उस आदमी की उस बात को सुनकर हैरत से में मुब्तला हो गया। इस तरह किसी को इतनी ज़्यादा रकम और इस अंदाज़ में मांगते कब देखा था। लेकिन वह आदमी अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज बस यही रट लगाए हुए था कि मेरे मालिक मुझे 10,000 दरहम का मालिक बना दे। उस आदमी की दुआ का अंदाज़ देखकर वो नौजवान अपने घर गया और 10,000 दरहम उसे भिजवा दिए। आइए अब दूसरा मंज़र देखें। इसका किरदार भी वही खूबसूरत नौजवान है। एक बाग के पास से गुजरते हुए उनके कदम ठिठक गए। बड़ा अजीब मंज़र निगाहों के सामने था। एक हबशी गुलाम ज़मीन पर बैठा खाना खा रहा था। उसके साथ ही एक कुत्ता भी बैठा था। गुलाम एक लुकमा खुद खाता और दूसरा लुकमा उस कुत्ते के मुंह में डाल देता। उस खूबसूरत और हसीन नौजवान ने कदम उस गुलाम की तरफ बढ़ा दिए। करीब जाकर उससे कहा, ऐ गुलाम, ये क्या माजरा है? तुम्हें इस काम पर किसने उभारा है? गुलाम मुस्कुराया और बोला, मुझे इस बात से बहुत हया आती है कि मैं खुद खाऊं और इसे ना खिलाऊं। वह हसीन नौजवान ये बात सुनकर कुछ सोचने लगा। फिर उस गुलाम से कहा, तुम यहीं ठहर कर मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो वजही नौजवान उस गुलाम के आका के पास गया और उस गुलाम को इस बाग समेत ख़रीद लिया जिसमें वो मौजूद था। फिर वापस उस गुलाम के पास पहुँचा। गुलाम वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। उस खूबसूरत नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें और इस बाग को ख़रीद लिया है। गुलाम ने हैरत से उस वजही नौजवान को देखा जो कह रहा था, आज से तुम आज़ाद हो और ये बाग तुम्हारा है। इन दो मनाजिर को आपने देखा, कैसे लगे आपको? अब यकीनन आपका दिल उस हसीन और वजी नौजवान का नाम जानने के लिए बेताब होगा। तो सुनिए, ये वो नौजवान थे जो बात करते तो बहुत हसीन बात करते, खामोश होते तो खामोशी में भी दिलकशी होती, किसी को कुछ इनायत करते तो खूब अता करते, जवाब देते तो बहुत शानदार जवाब देते, किसी के हमनशीन होते तो ज़िंदगी को हसीन बना देते, किसी की जहालत पर बेहतरीन दरगुजर करते। यकीनन आप इन खूबियों के हामिल इंसान के मुतालिक जानना चाहेंगे। इन औसाफ़ के मालिक वो हैं जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वालदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं, जिनके वालिद बहादुरी और फसाहत व बलागत के हामिल सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये गिरा कदर खूबियाँ और औसाफ़ उस अजीम नौजवान की हैं जिनका नाम सैयदना हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आपका नाम हसन और कुनियत अबू मोहम्मद थी। आपकी ये कुनियत आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। अगरचा नाम मोहम्मद नाम का कोई बेटा आपका ना था, हसन आज हम सब के लिए बहुत मारूफ, जाना पहचाना और शायद आम सा नाम है, लेकिन जब उनका नाम रखा गया उस दौर में ऐसे नाम रखने का रिवाज नहीं था। सबको अजीब लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम को सबके दिलों में महबूब बना दिया। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे थे। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे। आपको यह एजाज़ हासिल है कि कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वे तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। ग़ज़वे ख़ैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम असहाबे कराम इस सआदत को पाने के लिए पुर उम्मीद और बेचैन थे। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, उस दिन के सिवा मैंने इमारात को कभी पसंद नहीं किया। चुनाचा अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरे पास बुलाओ। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और झंडा उनको अता हुआ। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बहादुरी में यकता थे। आपने जिसे भी मुकाबले के लिए ललकारा, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थीं। इंतहाई परहेज़गार और मुत्तकी, तबीयत में नफासत और गुफ्तगू में सदाकत के जौहर नुमाया थे। और क्यों ना होते, बचपन ही से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हालत में परवान चढ़ी, और सबसे बढ़कर ये कि वो सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की बेटी थीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाईं और रिसालत के इब्तदाई और कठिन दौर में आपकी मदद और गमख्वारी की। सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, फ़ातिमा कायनात की तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, फ़ातिमा मेरी लख्त जिगर है, जो चीज़ उसे बेचैन कर दे वो मुझे परेशान करती है, और जो उसे तकलीफ़ दे वो मुझे तकलीफ़ देती है। सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने तक्वा, नरम मिजाज और जहद की वजह से ना सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीज़ थीं, बल्कि उस मकाम पर फ़ाइज़ हो चुकी थीं कि अल्लाह ताला की बारगाह में भी इन्हें एक क़ुर्बे ख़ास हासिल था। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के गुलशन में ये फूल सन 3 हिजरी में खिला। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो रमज़ान का मुकद्दस महीना था। ये भी कहा जाता है कि आप ग़ज़वा बदर के तकरीबन 1 साल बाद शाबान 3 हिजरी में पैदा हुए। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती और खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनका नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो मैंने इनका नाम हर्ब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, क्या नाम रखा है तुमने इसका? मैंने कहा हर्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और कहा, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरा बेटा पैदा हुआ, आप तशरीफ़ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम मोहसिन है। फिर आपने फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहि सलाम की औलाद के नाम पर रखे हैं। हारून अलैहि सलाम के बेटों के नाम ये थे, शब्बर, शब्बीर, मुशब्बिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत और उन्स था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ख़बर दी कि वो एक ख़ास मकाम और फजीलत वाले होंगे, और अल्लाह ताला उनकी वजह से दो जमातों में सुलह कराएगा। अबू बकरा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने के दौरान सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, हत्ता के मिंबर पर चढ़ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये मेरा बेटा सरदार है, और यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये फ़रिश्ता उस रात से पहले कभी नहीं उतरा। उसने अपने रब से ख़ास तौर पर इजाज़त तलब की है कि वो मुझ पर सलाम कहे, मुझे बशारत सुनाए कि यकीनन सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नती औरतों की सरदार, और सैयदना हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के यूं खेलने से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। खेलते वक्त बच्चे जो शरारतें करते हैं, जिस तरह नाज दिखाते हैं, सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वैसे ही करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लुत्फ़ानंदोज़ होकर बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा भी करते थे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज़ में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो सैयदना हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा पुश्त पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो दोनों को शफ़क़त और प्यार से पकड़कर ज़मीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज़ की, क्या मैं इन्हें इनकी माँ के पास ले जाऊँ? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहाँ तक कि वो दोनों अपनी वालदा के पास जा पहुँचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को उठाए हुए तशरीफ़ लाए। उन्हें आगे बिठा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ के लिए अल्लाहु अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी पुश्त पर थे। मैं वापस सजदे में लौट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबा सजदा किया। हमने समझा शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं, बात दरअसल ये थी कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को अक्सर बोसा देते और अपने कंधे पर उठा लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत की दावत दी और फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे और जो लोग हाजिर हैं वो दूसरों लोगों तक इस बात को पहुँचा दें। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत एक ख़ास मायने रखती थी। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो खूबरू हसीन और पुरवक़ार इंसान तो थे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखते थे। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सबसे ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहबत रखते थे। इसी बिना पर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन जब भी सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखते तो उनके दिल बेख्तियार मोहब्बत से लबरेज हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब लोगों की नज़र आप पर पड़ती तो इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीते हुए दिन याद आ जाते। उनके दिलों पर गम का साया सा छा जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। बाज़ लोग तो बुलंद आवाज़ से रोने के करीब हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो जब भी उनको देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती। उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद रोज़ बाद मैं सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ असर की नमाज़ पढ़कर बाहर निकला। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हमारे साथ पहलू बा पहलू चल रहे थे। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो करीब से गुजरे तो उन्होंने सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सूरत है, अली के मुशाबे नहीं है। उकबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का कहना है कि यह सुनकर सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुरा रहे थे। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की फ़याज़ी और सखावत के मनाज़िर हम शुरू में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ परहेजगारी में भी सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत कमाल रखते थे। उन्हें हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी की तलब रहती थी। आप रोज़ाना रात को सोने से कबल सूरह कहफ पढ़ा करते थे। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना उनके नज़दीक इबादत थी। एक बार आप एतिकाफ़ में थे, एक साहिल ने आकर सवाल किया तो एतिकाफ़ के दायरे से निकलकर इसकी ज़रूरत को पूरा किया और फिर एतिकाफ़ गाह में दाखिल हो गए। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े जाहिद थे। क्यों ना होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। अबुल हवारा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से अर्ज़ की, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है, यानी क्या बात याद है? سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کھجور سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حرج تھا؟ یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اس شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے آپ سے کہا، کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہونے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات یعنی رشتے ناتے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور رہا رحمت کا معاملہ، تو اللہ نے فرمایا ہے، میں عنقریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے، ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں، ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا، البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کچھ جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جس پر عمرو رحمت اللہ علیہ راضی نہیں تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناخاک آلود کر دے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا، ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بیوقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بیوقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، جو بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین یعنی دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو، تو عادل بن جاؤ گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا، اور لالچ نفس کا دشمن ہے، اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت بھرے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج کے مالک تھے، वह अपने ऊपर जुल्म करने वालों के लिए बहुत हलीम थे। जो अपनी जहालत से उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते थे वो उनसे दरगुजर करते। उसी नरमी और दरगुजर की बिना पर आप लड़ाई झगड़े से गुरेज करते थे। जब रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी को सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हो को मस्जिद में शहीद कर दिया गया तो लोगों की निगाहें खिलाफत के लिए आपकी तरफ उठीं, क्योंकि आपके आदात और अखलाक काबिल तारीफ़ थे। आप हमेशा हक पर साबित कदम रहते थे। सखावत और बहादुरी आपकी शान थी, बर्दबारी और सब्र आपकी पहचान थी। जब सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपको खलीफा चुनने पर मुत्तफिक हो गए तो लोगों ने आपकी बैत करना शुरू की। तकरीबन 40,000 से ज़ायद लोगों ने आपकी बैत की। आप तकरीबन 7 माह इराक, खुरासान, हिजाज और यमन के इलाकों में खलीफा रहे। उधर मल्क शाम में अमीरुल मुमिनीन सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद माविया बिन इब्ने सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की बैत की गई। माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सब लोगों से बढ़कर फितना फसाद को नापसंद करते हैं। चुनाचा उन्होंने ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे राबता कायम रखा और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाया और उनसे ये वादा किया कि अगर उन्हें माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई हादसा पेश आ गया और सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदा हुए तो वो खिलाफत की ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द कर देंगे। इसका मतलब यही था कि माविया रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने बाद खिलाफत सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों को देने का वादा कर लिया। अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैंने एक राय कायम की है, मैं पसंद करता हूँ कि तुम इसमें मेरी पैरवी करो। मैंने कहा, वो राय क्या है? सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मेरा ख्याल है मैं मदीने का कसद करूं, मदीने का रुख करूं और वहां क़याम करूं और खिलाफत वाला मामला माविया रदी अल्लाह ताला अन्हों के लिए छोड़ दूं, क्योंकि ये फितना तूल पकड़ गया है, खूनरेज़ी भी हो चुकी है और रास्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई कि अल्लाह ताला उनकी वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा खिलाफत के हकदार होने के बावजूद माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को आपस की खूनरेजी से बचाया जाए। खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद लोगों को इकट्ठा करके हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हिकमत और दानाई से भरपूर खिताब फरमाया। आप रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे पहले वालों के ज़रिए से तुमको हिदायत दी और बाद वालों के ज़रिए तुम्हारी खूनरेजी बंद कराई। सुनो, दानाइयों में से बेहतरीन दानाई तक्वा है और शिकस्तों में से सबसे बड़ी शिकस्त बदआमाली है। और ये खिलाफत का मामला जिसका मेरे और माविया रदी अल्लाह ताला अन्हों के दरमियान इख्तलाफ था, या तो वो उसके मुझसे ज़्यादा हकदार हैं या ये मेरा हक़ है कि जिसे मैंने अल्लाह ताला की खुशनूदी, उम्मत मोहम्मदिया की बेहतरी और तुम्हारे दरमियान खूनरेजी बंद करने की खातिर छोड़ा है। ये 40 हिजरी की बात है। सुलह वाला ये साल मुसलमानों में आमुल जमात के नाम से मशहूर है, क्योंकि मुसलमानों का तफरका मिट गया और वो मुत्तहिद होकर एक जमात बन गए। अहले कूफा में से बाज़ लोगों ने सुलह करने पर सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों को ताने भी दिए, लेकिन आपने हर ताने को सब्र से बर्दाश्त किया और अपनी इसी राय पर कायम रहे, जिसमें उम्मत की सलाह और फलाह के सिवा कोई कुछ पेश नज़र ना था। सुलह के बाद सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने मुनव्वरा चले गए और बाकी उम्र अपने नाना के शहर मदीने मुनव्वरा में बसर कर दी। वक्त का ज़्यादातर हिस्सा इबादत इलाही में सर्फ होता था। माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स से हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के हालात दरियाफ़्त किए तो इसने कहा, फजर की नमाज के बाद से तुलुए आफ्ताब तक मुसल्ले पर रहते हैं, फिर टेक लगाकर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों से मिलते हैं। दिन चढ़े चाश्त की नमाज अदा करके उम्महातुल मुमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर होते हैं। अगर आपकी मक्का मौजमा में अगर आप मक्का मौजमा में होते तो मामूल ये था कि असर की नमाज़ हरम पाक में अदा करके तवाफ़ में मशगूल हो जाते। सन 15 हिजरी से आपके लिए 5,000 दरहम सालाना वजीफ़ा मुकर्रर था। उस वक्त आपकी उम्र 12 बरस थी। ये वजीफ़ा 40 हिजरी तक जारी रहा। सैयदना माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह के बाद अहदनामे के रूह से सूबा अहवास का खराज यानी टैक्स आपके सुपुर्द कर दिया गया। इस खराज की मकदार 10 लाख दरहम सालाना थी। वफात से कबल आपने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से उनके घर में अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त तलब की। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनको इजाज़त दे दी, लेकिन मरवान बिन हकम और बनु उमैया में से इनके साथी आड़े आ गए और उन्होंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन करने से रोक दिया। आपके भाई सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने का इरादा किया, लेकिन सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इन्हें बताया कि उनके भाई सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मामले में खून बहाने से रोका है। चुनाचा सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु बकी कब्रिस्तान में दफन हुए। वफात के वक्त आपकी उम्र 47 साल थी। आपकी वफ़ात पर आपके भाई मोहम्मद बिन अली खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए, यकीनन आपकी ज़िंदगी की इज्जत आपकी वफ़ात से ज़्यादा मज़बूत हो गई है और वो रूह बहुत ही खूब थी जो आपके जिस्म के साथ मिल गई थी, और वो जिस्म बहुत ही अच्छा है जिसे कफन ने अपने साथ मिला लिया है। भला ऐसे क्यों ना हो जबकि आप हिदायत का जौहर मुत्तकियों के दोस्त और अहले बैत पर मुश्तमिल चादर वालों में से पांचवीं फ़र्द हैं। आपको हक़ वाली हथेलियों ने ग़िज़ा खिलाई और आपने इस्लाम की गोद में तरबियत पाई। अगरचे आपकी जुदाई की वजह से हमारे दिल खुश नहीं हैं, लेकिन आपके लिए हमारी खैर व भलाई में कतई शक नहीं। अल्लाह ताला आप पर रहमत फ़रमाए। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, ऐ लोगों, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब वफ़ात पा गए हैं। सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, ऐ अबू मोहम्मद, अल्लाह ताला आप पर रहमत फ़रमाए, आप यकीनन हक़ के हिमायती थे। आप नबुवत के नसल की नस्ल से हैं और हिकमत व दानाई का दूध पीने वाले हैं। सो आप अपनी रूह के साथ खुशबूदार पौधों और पुर नेमत जन्नत की तरफ सुधारें। अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे लिए अजर व सवाब को अजीम बना दे। या अय्यो तो हन नफ्सुल मुतमईना तुरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया फ़तखुली फ़ी इबादी वतखुली जन्नती। दुनिया फितना और फसाद में मुब्तला है, फ़र्द से लेकर अकवाम तक, आम से लेकर ख़ास तक। हर फर्द अपने हक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, हक़ मांगता है, नहीं मिलता तो छीन लेता है। यह उनका दस्तूर है जिन्हें दुनिया से प्यार है, लेकिन जिन्हें आखरत की फ़िक्र हो, अपनी आखबत का एहसास हो, वह हक़ छीनना तो एक तरफ रहा, अपना हक़ कुर्बान कर देते हैं। ख़ानदानी नबूवत का वो शहज़ादा हक़ पर था। लोग उनके जहद व तक्वा के मुतारिफ थे, उनके सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल को जानते थे, हक़ के लिए उनकी साबित कदमी को मानते थे। लेकिन फितना व फसाद से बचने के लिए, आपस में खून बहाने से बचने के लिए उन्होंने अपना हक़ हुकूमत कुर्बान करके एक मिसाल कायम कर दी। यहाँ सिलसिला दौरे नबूवत के बच्चे का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानी है। जज़ाकअल्लाह।